तो आज का जो हमारा टॉपिक है पवित्र भव योगी भव। और आज की जो मुरली थी उसमें मीठे बच्चों को पहली शिक्षा में बाबा ने क्या कहा, बाप आया है। कौन सा वाला बाप? स्वीट बाप आया है। क्यों आया है? क्यों आया है? स्वीट बनाने। क्या तरीका है स्वीट बनाने का? तो का कड़वापन निकाल के बच्चों को स्वीट बनाता है, यही कहा ना बाबा ने। और फिर कड़वापन क्या है तो कहा पतित पने को ही कड़वा कहते हैं। प्रश्नोत्तर में कहा ना कि नफरत क्यों आनी चाहिए इस दुनिया से, क्योंकि ये दुनिया कुंभी पाक नरक बन गई है, कड़वी हो गई है, और कड़वी माना ही पतित बन गई है। विषय वैतरणी में गोते लगा रहे हो और इसलिए अब इस दुनिया से नफरत की, इस दुनिया से पार होना है। तो बात पूरी आती है कि पतित पने को निकालना ही पवित्र बनना है। 27/12/74 27 December 1974 की मुरली है जिसमें बाबा ने, क्योंकि हमारे भट्टी का लक्ष्य क्या है, बाप समान बनना है, और उस मुरली में बाबा ने कहा बाप समान बनने के लिए या बाप के समीप आने के अधिकारी बनने के लिए, ये जो दो वरदान है, कौन से? पवित्र भव योगी भव, इन वरदानों का स्वरूप बनना आवश्यक है। बिना इन दो वरदानों के स्वरूप बने हम बाप समान नहीं बन सकते, हम बाप के समीप जाने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। और उस मुरली में बाबा ने इतने सुंदर रीति से कहा है कि जो हम 7 days कोर्स कराते हैं, उस 7 days कोर्स का स्वरूप बनना ही माना योगी बनना और पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं कि जैसे आप किसी को 7 days कोर्स कराए, जब तक सामने वाला 7 days कोर्स नहीं करता है तब तक आप उसको क्लास में बैठने नहीं देते हो। कौन सी क्लास में नहीं बैठने देते हम उसको? मुरली क्लास में बैठने नहीं देते। ऐसे ही बाप दादा और ड्रामा आपको तब तक फर्स्ट क्लास में बैठने नहीं देंगे जब तक आपने इन दो वरदानों का कोर्स नहीं किया है। अर्थात वरदान का कोर्स करना माना वरदान का फोर्स अपने अंदर जब तक भर नहीं लिया है तो बाप दादा और ड्रामा भी आपको फर्स्ट क्लास में बैठने नहीं देंगे। और क्या है फर्स्ट क्लास? तो का सत्युग का आदि का समय, वो है फर्स्ट क्लास। तो बोलो हमें कहाँ चलना है, सत्युग के आदि में या पीछे में, मध्य में, अंत में? हाँ, आदि में। तो आदि में अगर चलना है तो हमें इन वरदानों का भी कोर्स करना होगा। जैसे हम नहीं अलाउ करते हैं 7 डेज कोर्स किए बिना किसी को मुरली क्लास में, तो मुरलीधर की जो स्थापित की हुई सत्युग है, जहाँ के आरंभ काल में वो मुरलीधर कृष्ण भी होगा, एक मुरलीधर शिव है जो ज्ञान की मुरली बजाता है, और वो दूसरा मुरलीधर कृष्ण है जो सुख चैन की बंसी बजाता है, है ना? तो इस मुरलीधर ने, शिव मुरलीधर ने जो हमें ये 2 वरदान दिए हैं, जब तक हम इसका स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक वो कृष्ण मुरलीधर वाले के आदि काल के सत्युग के समय में हम नहीं आ सकते हैं। और बाबा से हमें हर दिन वरदान मिलते हैं, लेकिन उस मुरली में बाबा कहते हैं कि आपको जितने भी वरदान मिलते हैं ना उस वरदाता बाप से, उन सभी वरदानों का एसेंस, उन सभी वरदानों का सार ये 2 वरदान है, और जो जन्म लेते ही हमें मिल जाते हैं 7 डेज कोर्स करते ही। एक तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता हूँ, दिव्य ज्ञान देता हूँ, और पवित्र भव, योगी भव का वरदान दे देते हैं। तो 7 डेज कोर्स तो हमने कब का कर लिया है, कल हमने हाथ उठवाए कि 1 से 5 वर्ष के, 5 से 10 वर्ष के, 10 से 15 वर्ष के बच्चे, हाँ ऐसे सबके अलग अलग कैटेगरी करके हमने परिचय प्राप्त किया। तो इतना तो जाहिर है कि 1 साल से तो कम वाला कोई नहीं है यहाँ पे, मतलब काफी समय हो गया है। 1 साल बहुत समय होता है कि हमने 7 डेज कोर्स कर लिया है। अब अपने आप से पूछना है क्या इस कोर्स का स्वरूप बने हैं, क्योंकि बाबा ने ये कह दिया कि इस कोर्स का जो रहस्य है इन 2 वरदानों में समाया हुआ है। अर्थात क्या हम सचमुच पवित्र और योगी बने हैं, हम अपने आप से पूछें। क्योंकि अगस्त का मास चल रहा है, त्योहारों की धूम मची हुई है, जिसमें विशेष रक्षाबंधन परसों 11 तारीख को मनाया जाएगा, और आज आपको जब सौगात मिलेगी तो आपको भी वो रक्षा का सूत्र दिया जाएगा, और आज आपने स्वयं ने कैसे दीदी को भी रक्षा सूत्र बांधा, अर्थात उस रक्षाबंधन का पर्व चल रहा है, इसकी हमें पूरी इस समय अवेयरनेस है। लेकिन रक्षाबंधन का जो पर्व है उसके साथ जो पवित्रता जुड़ी हुई है, क्या मुझे उसकी इतनी अवेयरनेस है कि क्या मैंने अपने जीवन को इतना पवित्र बना लिया है, अपने भीतर की अपवित्रता को मिटाया है? क्योंकि जब गीत भी सुना हमने तो गीत में भी क्या कहा, योगी पवित्र जीवन, अंतर का कोना कोना साफ कर देता है। तो क्या मेरे अंतर का कोना कोना साफ हुआ है, ये भट्टी उसी के लिए है। कल भी हमने यही कहा आपको कि सुना तो बहुत है, लेकिन क्या उसका हम स्वरूप बने हैं और वो स्वरूप बने हैं या नहीं बने हैं, उसके लिए भीतर जाके चेकिंग करो। क्या चेकिंग करो? कि जो जो बाबा चाहता है, कि जो फर्स्ट क्लास की सीट में जाना चाहते हैं, वहां पे कैसे होगा, क्या गुण होंगे उन देवताओं के? हाँ, गुण तो सभी में होंगे, लेकिन परसेंटेज कितना हाई होगा? क्या उतनी हाई परसेंटेज तक मेरे भीतर वो दिव्य गुणों का गुलदस्ता का जो हम बात करते हैं 7 डेज कोर्स में भी, क्योंकि हमारी 4 बातें होती है, 4 विषय हैं इस पढ़ाई के, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा और वरदान। ये बाबा ने हमें वरदान दिए हैं और वरदान का स्वरूप बनना, मतलब वरदान का स्वरूप बनना मतलब अब वो मेरे से रेडिएट होता रहे स्वतः। कोई आके मेरे से वरदान मांगे और मैं उसको दूं? नहीं, मुझसे ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशंस रेडिएट होते रहे। और क्या वो मेरे पवित्रता के, योगीपन के वाइब्रेशन रेडिएट हो रहे हैं? क्योंकि एक कैंडल है, लालटेन है, अंदर में बत्ती है, नीचे उसका टैंक है जिसमें केरोसिन भरा है, और केरोसिन भर के फिर वहां पे बत्ती भी लगा दी गई है और उसको माचिस की सहायता से प्रज्वलित भी किया है, लिट भी किया है, और उसके चारों ओर कांच है उसको सेफ्टी के लिए। तो अगर मैंने लालटेन में पूरा भर दिया है जितना उसकी स्पेस है, उसका जो टैंक है, और बत्ती भी फ्रेश लाई हुई है, और उसको डीप भी किया है उसमें, और फिर प्रॉपर हाइट पे भी रखा है और जलाया भी है, लेकिन जो कांच है उसके कवरिंग के रूप में, उसकी काली माँ को मैंने साफ नहीं किया है, तो क्या वो प्रकाश बाहर उतना रेडिएट हो पाएगा? उतना उजाला बाह्य जगत में अनुभव कर पाएंगे? नहीं। तो 7 डेज कोर्स कर लिया, ज्ञान के ऊपर ज्ञान सुने जा रहे हैं, मैंने टैंक भर दिया, मैंने केरोसिन का टैंक भर दिया। कल भी हमने कहा ना, हमने खूब भर लिया है, अभी कमी नहीं रह गई, अभी खूब भरा है, लेकिन क्या उस बत्ती को उस ज्ञान में डुबाया है? बत्ती क्या है? वो स्मृति में हम रहते हैं, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं था तो मैं इसको मैं समझ रही थी, लेकिन ज्ञान मिला ये अलग है, ये देह अलग है और उस देह को धारण करने वाली शक्ति अलग है, जिसको देही कहते, आत्मा कहते, वो हम हैं। तो ज्ञान तो भर लिया मैंने अंदर में ये वाला, लेकिन क्या अब ये स्मृति में रहता है? बेशक स्मृति में रहता है, बात आती है सदा और स्वतः की, बात आती है सदा और स्वतः की। तो बाबा कहते हैं कि जैसे इस स्वरूप की स्मृति सदा रहती है, स्वतः रहती है, बल्कि चूंकि अब चूंकि पता चल गया कि ये गलत है, अभी भुलाने में मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी स्मृति पक्की हो गई है कि पता है ये गलत है, उसको भुलाने में भी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि वो सदा और स्वतः वाले मोड में आ चुकी है 63 जन्मों से। तो ऐसे ही क्या मैं आत्मा हूं, मैं पवित्र हूं, मैं योगी हूं, ये स्मृति सदा और स्वतः रहती है? अगर ये रहती है तो हम कहेंगे कि हमने वरदानों का कोर्स किया है, वरना तो 7 days कोर्स किया है, वरना तो सिर्फ 7 days कोर्स किया है। तो मैं कैसे चेक करूं अभी? एक चेकिंग सदा और स्वतः, क्या मैं उसमें रहती हूं? दूसरी चेकिंग, क्या मैं अपवित्रता से, विस्मृति से अलग हुई हूं? अपने आप से पूछना है। विस्मृति माना बॉडी कॉन्शियस में आ जाना, है ना? विस्मृति माना बॉडी कॉन्शियस में आ जाना, अपवित्रता की जीवन में भाव चलना, अंदर में फीलिंग्स आना, वाचा में उस प्रकार की भाषा आ जाना, कर्म में उस प्रकार से व्यवहार कर लेना, स्वप्न इस प्रकार के आ जाना, ये निशानी है कि अपवित्रता गई नहीं है अभी, अपवित्रता अभी गई नहीं है। अगर गई होती तो मेरे फीलिंग्स में नहीं आती, मेरे बोल में नहीं आती, मेरे कर्म में नहीं आती, मेरे स्वप्न में नहीं आती, लेकिन आ रही है, माना अंदर है, अंदर है। ग्लास भरा हुआ है, टेबल पर रखा है, कोई अचानक ही बच्चा छोटा, कुछ उसे प्राप्ति हुई है, कोई गेम में विन किया है, खुशी खुशी में आ रहा है बताने, क्योंकि बच्चा है ना, वो खुशी खुशी में, उसको थोड़ी पता क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। मैं तो जाके अपनी खुशी जाके दौड़ दौड़ के आता है, और यहाँ पे आता है तो स्पीड रोकनी पड़ती है, तो धक्का लग जाता है, ग्लास गिर जाता है। तो ग्लास में पानी है तो पानी गिरेगा, ग्लास में दूध है तो दूध गिरेगा, ग्लास में विष है तो विष गिरेगा, जो है वही गिरेगा ना। तो हम कहते हैं ना कई बार, नहीं नहीं मैं किसी के लिए ऐसा नहीं सोचती, मैं ऐसे किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं रखती, पर जब सामने वाला करता है ना, मतलब स्टोरेज तो आपके पास है, स्टॉक तो है आपके पास, स्टॉक तो है, और जो ऐसी घटना बन जाती है तो स्टॉक से बाहर आ जाता है। अभी ग्लास में पड़ा है ना पानी तो, हाँ, लेकिन धक्का जब तक नहीं लगे वो तब तक यहीं पे है, और धक्का लगे तो पानी था इसलिए गिरा, अगर पानी होता ही नहीं तो क्यों गिरता, दूध होता तो दूध गिरता। तो चाहे मेरे जीवन में 7 days कोर्स किया, मतलब क्या हुआ कि मेरे मन में जो अनेकानेक सवाल उठते थे, उन सवालों को एक समाधान मिला। नहीं, कर्मा फिलॉसफी समझी, क्यों मेरे सामने ऐसा आता है, मैंने जब किसी से कुछ नहीं किया है, मेरा ही भाग्य ऐसा क्यों है, सबका तो दूसरा है, मेरा ही दुर्भाग्य, कितने कितने सवाल आते हैं। वो दूसरे जिनके भाग्य में बहुत अच्छा आता है, वो तो उनका बिहेवियर तो मेरे से भी गया बीता है, मैं तो बहुत संयमी जीवन जीता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य मेरे ही जीवन में आता है। हाँ भगवान, तूने, तेरे घर में न्याय नहीं है, अच्छों के भाग्य में तू बुराई डाल के रखता है और बुराइयों के, बुरा करने वालों के भाग्य में अच्छाई डाल के रखता है, या पहले हम सोचते थे। लेकिन ज्ञान मिल गया, माना अब उन प्रश्नों का उत्तर मिल गया कि नहीं बच्चे, मैंने तुम्हारे सामने दुर्भाग्य और सद्भाग्य नहीं लाया है, तुमने अपने कर्मों से अपने लिए सद्भाग्य और दुर्भाग्य क्रिएट किया है। तुम काल चक्र में घूम रहे हो, तो वर्तमान में जो भाग्य या दुर्भाग्य आया है वो पीछे कभी कर्म किया था, अभी नहीं किया था, पिछले वाले जन्म में किया था, लेकिन वो कर्म का फल पकने में टाइम लगा, तब तक तुमने चोला छोड़ दिया, दूसरा चोला ले लिया, फल अभी आया, तो अभी कह रहे मेरे पास क्यों आया, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो अब उन सब का समाधान मुझे मिल चुका है, तभी तो हमने स्वीकार किया ना इसको। हम कौन है, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, ये भी बहुत सारे प्रश्न उठते थे, उन सब का भी समाधान मिल गया। भगवान कौन होता है, क्या होता है, क्योंकि अनेकानेक परिचय उपलब्ध है, उसको भी पूरी अंडरस्टैंडिंग से समझ लिया और मन स्थिर हो गया, सच है तो यही है। जो खोजते रहते थे उस खोज को विराम मिला, जो तलाश थी उस तलाश को विराम मिल गया, लेकिन यात्रा वहां पूरी नहीं होती है, यात्रा तो असली अभी शुरू हुई है। पता चल गया कि आए थे धरती पे पवित्र स्वरूप लेकर के, सत चित आनंद, यही कहते हैं ना। क्या होता है सतमाना, सतमाना क्या होता है, इटर्नल, इटर्नल माना शाश्वत, शाश्वत माना परमानेंट, परमानेंट माना तीनों कालों में जो एग्जिस्ट करता है, तीनों कालों में जिसका अस्तित्व कायम रहता है, काल जिस अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकता है, वो अस्तित्व को सत्य कहते हैं, और वो है आत्मा। आत्मा को काल खत्म करता है, नहीं करता है। तो सत्य चित आनंद, आत्मा सत्य है। दूसरा है चित, चित है माना क्या है, चित है माना क्या है, चैतन्य, चैतन्य है माना क्या है, सिंप्लीफाई करना है ना, क्योंकि तभी जाके पुरुषार्थ में सफलता मिलेगी। क्योंकि मैंने तो सोच लिया अर्थ का, या तो हिंदी अर्थ ढूंढ लिया, नाम ढूंढ लिया, या तो इंग्लिश नाम ढूंढ लिया, पर उसका भी प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। चित्त माना चैतन्य बोल दिया, चलो चैतन्य माना क्या, चैतन्य माना क्या, हाँ? चैतन्य माना, कोई बेहोश हो जाता है ना तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियस हो गया। इंग्लिश में चैतन्य को क्या शब्द बोलते हैं, जैसे सत चित आनंद बोला तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रुथ, कॉन्शियसनेस और ब्लिस। तो चैतन्य माना कॉन्शियसनेस, और बेहोश हो गया तो क्या बोला, तो कॉन्शियसनेस माना कॉन्शियस में रहना, चैतन्य माना कॉन्शियस में रहना, और कॉन्शियस में रहना माना स्मृति में रहना, स्मृति में रहना माना ज्ञान का एप्लीकेशन, कि मुझे ज्ञान है कि मैं कौन हूं। जो अनकॉन्शियस हो गया उसको ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां पड़ा हूं, उसके सामने कोई जा भी रहा है मिलने के लिए, नहीं एडमिट होते कई बार कोमा में चले गए हैं, हम जाते हैं मिलने के लिए तो का आंखें तो उसकी खुली है, घूम रही है, पर उसको होश नहीं कि कौन मेरे सामने आया है और क्या है करके, क्या मेरे से पूछ रहे करके, यही कह रहे ना। तो चैतन्य माना क्या, ज्ञान होना, स्मृति रहना, होश में रहना, इसको कहते चैतन्य। और तीसरा है आनंद। आनंद माना क्या, आनंद माना क्या, ब्लिस, इंग्लिश में ब्लिस बोल दिया, ट्रांसलेशन हुआ वो, मीनिंग क्या है। हाँ, जैसे हम कहते हैं जितने भी दूसरे गुण हैं उनके लिए अपोजिट अवेलेबल है, सुख के लिए दुख है, शांति के लिए अशांति है, प्रेम के लिए घृणा है, आनंद के लिए कोई शब्द है, कोई शब्द है, नहीं है। तो आनंद माना क्या, क्योंकि सुख और दुख कब है, जब आत्मा शरीर में आ रही है, लेकिन जब आत्मा शरीर में भी नहीं है तो वो कौन सी अनुभूति में है वो, क्योंकि अतींद्रिय सुख माना क्या, जो इंद्रियों से परे वाला सुख, और इंद्रियों से परे वाला सुख माना अपनी स्व स्थिति में स्थित रहने वाला सुख, उसको नाम कहा दिया है आनंद। और अगर मैं आनंद में हूं, इसकी निशानी यही होगी कि मैं सुख दुख से परे हूं, या तो मैं सुख की फीलिंग में हूं या तो मैं दुख की फीलिंग हूं, मतलब कि मैं अभी भी उस अपनी स्वयं के स्वस्थिति से अभी भी दूर हूं, यही हुआ ना। तो सत चित आनंद, ये तीन शब्दों का मंत्र या फार्मूला, एक बहुत बड़ा सूत्र है ये, कि सचमुच में आनंद की स्थिति में मैं कब रहूंगी, चित्त में अर्थात होश में अर्थात स्मृति में जब सत्य होगा तो आनंद होगा। और सत्य क्या है, तीनों कालों में, तीनों कालों में कौन रहता है, देह या आत्मा, आत्मा की स्मृति में है तो आनंद है। और अगर स्मृति में सत्य नहीं है, आत्मा नहीं है, मतलब देह है, असत्य है, तो फिर आनंद नहीं है, तो फिर दूसरी दूसरी फीलिंग्स में हम आ जाते हैं। जो बाबा ने कहा कि सतयुग से लेके त्रेता अंत तक हम नेचुरल सोल कॉन्शियस रहेंगे, अर्थात आनंद वाली जीवन होगी, लेकिन द्वापर आते आते हमारी नेचुरल सोल कॉन्शियस कहाँ चली गई, जीरो। और जीरो का मतलब ही है वो स्मृति से ओझल हो गई और सामने क्या आ गई, इसकी स्मृति, देह की स्मृति। और देह क्या है, सत्य है असत्य है, असत्य है। तो आनंद की फीलिंग से परे तो कभी सुख और दुख में झूलते रहे, और उसी सुख दुख में जो झूले, जो बॉडी कॉन्शियसनेस के बाद कामनाएं जागी, क्रोध आया, एक एक विकार आया, और ये सब जो विकार आए यही उस लालटेन के चारों ओर जो कांच है उसमें जो काली माँ है ये वही है, यही अपवित्रता है ना। तो बाबा जब पूछ रहे हैं कि पवित्र भव योगी भव, इस वरदान के स्वरूप बने हो, वरदान का कोर्स कर लिया है, तो हम अपने आप से पूछे। मधुबन में रक्षाबंधन मनाने का बहुत बड़ा भाग्य मिला है ना, आपके ग्रुप को ही मिला है और किसी को नहीं। हाँ, बाकी वाले तो आगे पीछे ना, आपकी तो एग्जैक्ट डेट आ रही है 11 तारीख की, और 11 तारीख को ही रक्षाबंधन का पर्व, कितने भाग्यशाली हो आप। लेकिन फिर उतना ही क्या मैंने सफाई की है अपने भीतर की, उतना ही फिर अपने आप से प्रश्न करना होगा कि बाबा चाहते हैं कि ये बच्चे अंदर से सफाई कर ले। जो कल भी हमने आपको कहा कि करोगे क्या एक घंटे योग में, कभी कभी भारी लगता है, एक घंटा बैठ के करेंगे क्या, कोई कमेंट्री भी नहीं कराएंगे हमको, तो क्या करेंगे बैठ के। ये उस कांच में जो काली माँ है ना, उसको बैठ के साफ करना है, क्योंकि जब तक पवित्र नहीं बनेंगे योगी भी नहीं बन सकेंगे, क्योंकि योगी बनना माना उसके साथ कनेक्शन होना, और उसके साथ कनेक्शन होना माना उसकी फ्रीक्वेंसी पे आना, और वो पवित्रता की उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी शांति की है, उसकी फ्रीक्वेंसी प्यार की है, उसकी फ्रीक्वेंसी शक्ति की है, और इधर तो क्या भरा पड़ा है, उसका अपोजिट भरा पड़ा है, तो योग लगेगा कैसे। और इसीलिए पहले ये समय था, दादियां बताती हैं कि हम जब बाबा के पास आए, हम जब बाबा को सरेंडर हुए, हमको बाबा ने लिखवाया बैठ के कि पूर्व जन्म का तो याद नहीं रहता है कि हमसे क्या क्या, वो सब कुछ हो गया है जो इस ज्ञान के आधार से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब तक अज्ञानता में थे हो गया हो गया, उसको इतना बड़ा थोड़ी मानते थे कुछ। लेकिन जब ज्ञान समझा और उस ज्ञान को देखने के बाद मैं देख रही हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे किया है, क्या वो ज्ञान के अनुकूल था, नहीं था। मैंने तो किसी ने छोटी गलती की थी, मैंने उसको इतने चमाट मारे थे, बात मत पूछो, इतना गुस्सा किया था, इतनी कड़ी सजा दी थी मैंने उसको। मैंने तो किसी को अपने पैसे मेरे पास आ जाए उस लालच में फलाने को ऐसे घुमा घुमा के चीट किया, उसको पता भी नहीं चला था। मैंने तो जो शुद्ध भोजन है उसके विपरीत कितना कुछ खा लिया है मैंने, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है, क्या शाकाहारी क्या मांसाहारी, ये क्या बोलते हो, ये नहीं पियो वो नहीं पियो, अरे पियो और एंजॉय करो, सब गम भूल जाते हैं। तो दादियां बताती है कि बाबा लिखवाते थे क्या क्या जीवन में ऐसा कुछ हुआ है जो ज्ञान समझने के बाद लगता है कि ये ठीक नहीं था, वो सब लिखो, लिख के बाबा को दो। क्यों? ये लिखना, बाबा को देना, लिखना भी कब होगा? जब रियलाइज करोगे ना। और यही रियलाइज करना, यही लिखना, यही बाबा को देना, यह है मैं कांच को साफ कर रही हूं। समझ में आया? हम बोलते ना, क्या जरूरत पड़ी है, बाबा ने तो बोल दिया ना कि तुम मेरे से योग लगाओ तो इस योगाग्नि में तुम्हारे विकर्मों का विनाश हो जाएगा। बेशक होगा, पर मैं योग लगा तो सकूं? योगाग्नि प्रज्वलित होए तो सही पहले। अरे भाई, अग्नि को जलाएंगे भोजन पकेगा, लेकिन अग्नि जले तो सही पहले। लकड़ियां इतनी गीली है, वो जलेगी नहीं, कहां भोजन पकेगा और कहां भोजन खाओगे तुम, और कहां तुम्हारा पेट भरेगा, और कहां तुमको शक्ति आएगी जो तुम काम करोगे। तो बेशक बाबा ने कहा है कि विकर्मों का विनाश योगाग्नि में भस्म होगा, पर मेरे योग की क्वालिटी वहां तक पहुंचे कि योगाग्नि तैयार हो, उसके लिए मेरी पवित्रता चाहिए ना। पहले पवित्रता चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसीलिए कल हमने इसी चीज को विस्तार किया था कि जो रिविजन चलेगा, नया कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि नया सिलेबस अभी उसमें से एग्जाम नहीं होने वाली, इसी में से होने वाली है। यही हमारी परीक्षा है कि हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है। बाप एकदम ट्रांसपेरेंट है, हमारे कांच में तो अभी बहुत सारी काली मां पड़ी हुई है। तो घर में भी जब लालटेन जलाना होता है, एक दिन मैंने यूज किया तो उसने प्रकाश भी दिया और साथ साथ धुआं भी जमते गया। नहीं, वही तो हमारे साथ हुआ है ना, कि हम परम धाम से उतर के आए, दो युग तक अच्छी जीवन जी बिना धुएं वाली, सिर्फ प्रकाश ही निकल रहा था, मतलब वो मेरी 7 क्वालिटीज जो थी, सुख शांति प्रेम, उसको ही अनुभव कर रहे थे। लेकिन दो युग के बाद प्रकाश का इंटेंसिटी डिम हुआ और धुआं निकलना शुरू हुआ। ऐसे ही हुआ ना, तो वो एक कल्प में हुआ। और यहां पे लालटेन जब जलाते हैं तो उसकी कैपेसिटी इतनी सी तो होती है ना, इतना ही तो टैंक होता है। और समझो शाम को 6 बजे अंधियारा हो गया है, रात तक चलता रहा तो उसका हाल तो यही हो जाएगा ना। शुरू में तो बिना धुएं का था, फिर धीरे 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 प्रकाश भी कम हुआ और उधर देखा कि कांच में भी उसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम हो रही, और रात होते होते तक तो वो तो पूरा ही काला हो गया। अब अगले दिन जब मैं उस लालटेन को उठाऊंगी, फिर से रात को अंधियारा हुआ है, तो चलो मैंने वो भर दिया केरोसिन, बत्ती भी बदल दी, हाँ डुबाई भी, लिट नहीं की, चलो लिट भी कर ली, जल भी गई, कांच साफ नहीं आएगा उतना उजाला नहीं आएगा। और ये भट्टी उसके लिए है, क्योंकि रियलाइजेशन करने के लिए अपने साथ बैठना होगा, खुद के साथ। इसीलिए हम क्या कहते हैं, राजयोग की कितने स्टेप बताते हैं, सीधा ही परमात्मा कुछ नहीं, पहले सेल्फ से कनेक्ट हो जाओ। हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो गए ना, क्योंकि हम बॉडी को सब कुछ समझने लगे थे, तो अपने से ही तो डिस्कनेक्ट हुए। और तभी तो अभी मेहनत लग रही है कि पता ही नहीं चलता है कब सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस में स्लिप हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और क्यों? क्योंकि वो अंदर में भरा हुआ है, तो ये जो बाबा का वरदान है, जब तक इसका स्वरूप नहीं बनेंगे तो हम भी वरदानी स्वरूप नहीं बनेंगे। और वरदानी स्वरूप माना ही बाबा भी तो मेरा वरदाता है ना, बाप समान की बातें कर रहे ना हम, तो हम बाप समान की बातें कर रहे, तो मेरा बाप करुणा का दाता और मेरे अंदर से कोई करुणा नहीं बह रही है। करुणा बहेगी ही तभी जब हम साफ हो जाएंगे, तब जब हम सत्य चित्त और आनंद होंगे, आनंद से ही वो करुणा बहती है। जब उस आनंद की स्टेज में होते वहीं से करुणा बहती है। और वही करुणा मतलब क्या होगी कि जो स्टेज मैंने प्राप्त की है, अब ऐसी स्टेज सभी प्राप्त कर ले, और उसके लिए हम सबकी सेवा में जुटेंगे। तो अब जैसे बाबा कहते समय बहुत आगे बढ़ गया है, 7 days कोर्स का असर अभी नहीं होगा इतना, क्योंकि बीमारियां क्रॉनिक होती जा रही है, बीमारियां क्रॉनिक होती जा रही है। अभी तो पेशेंट आता है कहता है मेरे पास कोई ताकत नहीं, कहता ठीक है सो जाओ, ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही तो पेशेंट आते हैं आजकल हमारे पास, तो हमको भी ग्लूकोज उनको चढ़ाना पड़ेगा ना, ज्ञान थोड़ी सुनेंगे, टेबलेट थोड़ी लेंगे, वो सीधा ग्लूकोज। तो यहां से फ्लो होना चाहिए ना, हमारा ग्लूकोज रेडी होगा तभी तो। वरदानी स्वरूप में आना माना, इसीलिए 2 मंत्र है ये। या तो योगी बोल देता ना बाबा, योगी बन जाओ सिर्फ, क्योंकि योग से ही तो विकर्म विनाश होंगे ना, पर ये पवित्र बाबा भी क्यों बोल दिया। तब गीत ने गाया, योगी पवित्र जीवन से अंतर का कोना कोना साफ, और जब साफ होता है ना तो महकता है, महकेंगे तभी ना, तब वो हमारे से, अभी जैसे कि कली पड़ी है अंदर, उस कली को खुलने के लिए स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए। स्पेस किसने घेर के रखा है, अपवित्रता ने। तो खुले तो कहां खुले, वो कहां खुले, जैसे कहा प्रकाश तो मैंने जला भी दिया, टैंक भर भी दिया, पर उसको फैलने के लिए उसको ट्रांसपेरेंसी तो दो, लेकिन वो काले मां को साफ ही नहीं किया अभी तक। तो साफ करने के लिए कपड़ा उठाना पड़ेगा, कांच को ऐसे करके साफ करना पड़ेगा। और कैसे साफ करें, तो बाबा ने उसमें इसी मुरली में कहा कि जैसे अभी नया जन्म हो गया ना हमारा, पहले शूद्र थे, अभी क्या बने हम, ब्राह्मण, अभी क्या बनना है, देवता। तो अब जब कोई मेरे जीवन में, मतलब मेरी फीलिंग्स में कोई ऐसी फीलिंग आ जाती है जो मेरे सोल कॉन्शियस के अपोजिट है, क्या हो सकती है वो फीलिंग्स बताओ। किसी बात के लिए मुझे एक, कोई बात मैंने ऐसे कर ली, अपराधी महसूस करता हूं, होता है ना, गिल्ट फील होता है, अपने आप को अपराधी महसूस करते हैं। चलो कोई गलती हो गई, बाबा के सामने रख दिया, बाबा ये क्यों कहते हैं कि झोपड़ी में जाओ और क्या करो, अपनी सारी दिल की बातें उसको बता के अपने आप को खाली कर दो। किससे खाली, ये बिना काम की बातों से खाली, काम वाली बातों से नहीं, जो मुझे भारी कर रही है, जो मेरी पवित्रता में दाग का काम कर रही है, वो सारी बातें उसको बताओ, रियलाइज करो, तब जाके कांच साफ होगा। तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी पे आऊंगी, अब कनेक्ट हो जाऊंगी, अब एकाग्र हो पाऊंगी। अब जब एकाग्र हो जाऊंगी तो वो लेंस 7 डेज का कोर्स में ही तो सिखाया था ना, लेंस का एग्जाम्पल 7 डेज कोर्स में ही है ना, तभी का वही वाला कोर्स अभी हमको काम आ रहा है। नया कुछ नहीं है, कोर्स का फोर्स, वरदानों का फोर्स बाबा ने वरदान के रूप में दिया है। एक होती है गाड़ी, इंजन चालू करो चलती है, इंजन पावरफुल है, लेकिन इंजन पावरफुल नहीं होती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, बोलते हैं धक्का मारो इसको, उसको धक्का मारो, बोलते नहीं मानते। तो स्वरूप बन जाना माना क्या, धक्का मार के हो गया है, अब अंदर पावर जनरेट हो गई है, तब हम समझेंगे सचमुच में अपवित्रता और विस्मृति की हमें अविद्या हुई है। तो चेक करना है बारीकी से, कभी किसी बात में अभिमान आता है, कभी किसी बात में मायूसी से मैं घिर जाती हूं। मायूसी का कारण कई बार ये भी होता है, मैं इतनी सेवा करता हूं फिर भी मैं किसी नजरों में नहीं हूं, मुझे फिर भी सब लोग इग्नोर करते हैं, आता है कई बार। ये हमें बारीकी से अपनी चेकिंग करना है। उदासी से तो कभी नहीं गिरता हूं, कभी मायूसी में तो नहीं आ जाता हूं, कभी प्राइड ईगो तो नहीं आ जाता है मेरे अंदर, कभी वो घृणा का भाव तो नहीं जागृत हो जाता है, हेट्रेडनेस तो नहीं आती है, किसी का मुंह भी नहीं देखना चाहता हूं मैं, फलाने का तो मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता हूं, बात भी नहीं करना चाहता हूं। क्या मैं ऐसी कोई भावनाओं से अभी भी अंदर में घिरा हुआ हूं, माना अभी भी मैं संपूर्ण पवित्र नहीं बना हूं। तो बाप समान बनने का लक्ष्य है, तो बाबा ने कहा उसमें मुरली में, न्यारा प्यारा किसको कहा जाता है, कि अभी तुम ब्राह्मण हो, अभी तुम शूद्र नहीं हो, और जब ऐसी तुमको दिखाई पड़े अंदर झांकने पर ये सारी बातें, तो अपने आप से बात करो, ये बातें तो शूद्र में होती है, ये बातें तो किस में होती है, शूद्र में होती है। मैं तो अभी संगम में हूं, मैं कलयुग में हूं क्या अभी, मैं तो संगम पे हूं, मैं तो अभी ब्राह्मण हूं, तो मैं तो शूद्र नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं, तो ये क्यों है मेरे में, ये मेरे को फेंकना है, ये रियलाइज, मैं इसको फेंकना चाहती हूं और इसको फेंक दूंगी। इतनी मैं बाबा से अभिशक्ति योग में बैठ के इकट्ठी करूंगी। जब इतनी स्लेट को पोंछ लेते हैं ना, तभी तो नया लिख सकते हैं, तभी नया लिख सकेंगे, तभी वो शक्ति आएगी। और इसीलिए कहा था कि पहले चेकिंग करना, चेकिंग यही करते स्कूल में जब हमारी एग्जाम होती थी, याद करो बचपन के दिन, छोटा सा किताब होता था, 3-4 पाठ होते थे, लेकिन कितने बड़े लगते थे, 3-3, 4-4 लाइन का उत्तर होता था, लेकिन परीक्षा के दिन में उसको पढ़ के क्या करते थे, घर में कोई भाई या बहन है उसको कॉपी थमा देते थे, तुम मेरे को पूछो ना, ये वाला पूछो ना। और अगर जब उसने पूछा और हम बोलने गए और कहां अटक गए, तो फिर हमने रियलाइज किया कि इसको मुझे और रिवाइज करने की आवश्यकता है, और जिसमें नहीं अटका उसमें गारंटी होगी, ये तो मुझे आ गया है, अभी इसको अभी नहीं पढ़ना, अभी इसको पढ़ना है। यही कर रहे थे हम लोग, यहां पे भी वही करना है कि मेरे में अभी अभी क्या क्या है जहाँ अटक जाती हूँ, कोई बात आ जाती है तो एक्सेप्ट करना। एक है कि हमने बाहर से एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मेरे भाग्य के अनुसार ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये परिस्थितियां मेरे जीवन में आई है, लेकिन भीतर से एक्सेप्ट करना मना। अब वैसी शुद्र पने की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अब तो ब्राह्मण हूं ना मैं, हजार भुजाओं वाला बाप मेरे साथ है, मैं उसका साथ लूं या शुद्र वाले संस्कारों का साथ लूं? बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, उसका साथ लूं ना मैं अभी? वो अपने आप से बात करके उसको यूज करूं। तब बाबा कहते इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा बनना। तो बाहर से एक्सेप्ट करना, फिर भीतर से। एक है बिलीव कर लेना, जैसे कहा कि यहां पर रियलाइज कर लो हां मेरे में है गलती, लेकिन अब डिसाइड कर लो मुझे इसको निकालना है। और फिर तीसरी स्टेप उठाओ निकालने के लिए, कनेक्शन करना है अभी, तब जाके वो परमात्मा की शक्ति, जिसको कहते हैं ना कि स्कूल में भी अगर मुझे एग्जाम टफ लगती है तो हम कई बार क्या बोलते हैं, मुझे 35 मार्क भी मिल जाएंगे ना, अहो सौभाग्य, पास तो हो जाऊंगी ना। लेकिन उस 35 के भी चक्कर में मैं जब सॉल्व किया, जितना भी किया, मास्टर देखता है, जब चेक करता है मेरी आंसर शीट, तो 33 ही मार्क मैंने स्कोर की, लेकिन 35 और 33 में तो बहुत कम अंतर है ना। तो वो ग्रेस देता है, बोलते ना ग्रेसिंग मार्क से पास हुआ है। लेकिन ग्रेसिंग सबको मिलती है क्या? उस मिनिमम के करीब तो रहो थोड़ा। तो हम भी अगर ये पवित्रता ही मिटाएंगे ही नहीं, रियलाइज ही नहीं करेंगे, वो बिलीफ सिस्टम नई वाली बनाएंगे ही नहीं कि ये मेरे में नहीं होना चाहिए, माना नहीं होना चाहिए, और उसको मिटाने के लिए मुझे प्रयास करना है, माना करना है और करने में लगूं, तब तो बाबा छप्पर फाड़ के ग्रेस देगा ना तुमको, तब तो देगा ना। तो भीतर में चेक करो बैठ के, किसी बात का फियर तो नहीं है? आत्मा सत्य है, निर्भय रहना है ना मुझे तो, लेकिन फिर भी कोई भय तो नहीं सता रहा है? क्या कोई चिंता सता रही है? कोई भय सता रहा है? किसी के साथ कोई वैर है? किसी के साथ किसी अभिमान में आ जाती हूँ? कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? ये सब चेकिंग करके फिर योग लगाएंगे तो बाबा छप्पर फाड़ के आप पर बरसेगा, और आपकी योग की क्वालिटी इतनी अच्छी होगी, आप महसूस करेंगे मैं अपने आप को भरपूर भी महसूस किया और हल्का भी महसूस किया, और तब जाके हम बाप समान बन जाएंगे, बाप के समीप आने के अधिकारी बन जाएंगे। तो उठो ऊपर 7 डेज कोर्स से, अब आ जाओ पवित्र भव, योगी भव, इस वरदानों के कोर्स से अपने आप में फोर्स भर दो। ओम शांति।
सुगंध